हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 79. शिवानी अपने साथ सक्षम को लेकर आश्रम के बाहर आए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी न हो, क्योंकि वो उसे वीरेश से जुड़ी हुई बात बताना चाहती है जो अब तक उसने किसी को नहीं बताया और सिर्फ उसे ही इस बारे में पता है। वह उसे आश्रम से थोड़ी दूर पर लेकर आई तो सक्षम ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ, बताओ कि कहाँ लेकर जा रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है गुरुजी ने हम सबको कहीं भी दूर जाने आने से मना किया है। सक्षम की बात सुनकर शिवानी ने भी उसका हाथ छोड़ दिया और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए उसने एक गहली सांस छोड़ी। वह इस वक्त बहुत ज्यादा ही परेशान और उलझन में लग रही है, ये बात सक्षम ने नोटिस कर ली, लेकिन वो शिवानी के बोलने का इंतजार कर रहा है। तभी शिवानी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मुझे पता है और मैं भी कभी गुरुजी के आदेश के विरुद्ध नहीं जाती है, बात तुम भी जानते हो, लेकिन अभी अभी मैंने एक गलती की है, पता नहीं ये गलती छोटी है या फिर बड़ी, लेकिन शायद मुझे ये बात गुरुजी से नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तुम जरूर मुझे सही सलाह दोगे सक्षम। बात को गोल घूमते हुए शिवानी ने ये सब कुछ कहा तो सक्षम पहले से भी ज्यादा परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा और उसने कहा, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें सही सलाह दूंगा, इसलिए इतना मत सोचो, जो भी बात है वो मुझे बता दो और मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। सक्षम की ये बात सुनकर शिवानी को थोड़ा अच्छा लगा और वो बोली, मुझे पता है वीरेश कहाँ गया है। एकदम से ही शिवानी ने ये बात बोली तो सक्षम एकदम ही चौंक गया और उसने चौंकते हुए कहा, क्या क्या बोल रही हो तुम, अगर तुम्हें पता है तो फिर जब गुरुजी सबसे पूछ रहे थे तब तुमने क्यों नहीं बताया, हम सब उसके लिए इतना परेशान हैं और तुम हो कि तुम्हें पता है फिर भी ऐसे चुपचाप बैठी थी वहाँ पर। शिवानी को भी उसकी तरफ से कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, इसलिए वो ज्यादा मायूस नहीं हुए और अपने आंखें बंद करके उसने दोबारा से खोली और सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम इसी तरह का बर्ताव करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अलग लेकर आई हूँ, और मुझे पता है लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकती क्योंकि वीरेश ने ही मना किया है, यहाँ से जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि ये बात मुझे सिर्फ अपने तक ही रखनी होगी, लेकिन मैंने उसका वादा तोड़ दिया, तुम्हें ये बात बताकर, अब तुम ही बताओ क्या सबको ये बात बताकर मुझे अपना वादा तोड़ देना चाहिए था पहले ही। शिवानी को इस तरह से दुविधा में देखकर सक्षम भी थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसे अभी भी पूरी बात नहीं पता है तो उसने शिवानी से पूछा, लेकिन ऐसे इस तरह से वीरेश ने मना क्यों किया तुम्हें कुछ भी बताने के लिए, और वो कहाँ गया है, अब तुमने अगर मुझे इतना बता दिया है तो तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे पूरी बात भी बता सकती हो, बताओ वो कहाँ गया है। शिवानी पर थोड़ा जोर देते हुए सक्षम ने उसे ये बात पूछी तो शिवानी ने सोचा कि अब अगर उसने इतना बता दिया है तो बाकी भी बताने से पहले शायद उसे नहीं सोचना चाहिए, तो सक्षम पर तो वो भरोसा कर ही सकती हैं। ये सोचकर उसने सक्षम को वीरेश के राजकुमारी चंद्रिका के साथ वहां से जाने वाली बात बता दी और ये भी बता दिया कि वो तीनों एक साथ मिलकर वसुंधरा को ढूंढने के लिए गए हैं। ये बात सुनते ही सक्षम के चेहरे पर एकदम ही हवाइयां उड़ने लगी और उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों को भी न बताएं वीरेश ऐसा कोई कदम भी उठा सकता है, और ऊपर से शिवानी को इस बारे में पता था लेकिन फिर भी उसने गुरुजी को नहीं बताया, तो ये सब कुछ सोचकर अब सक्षम का दिमाग खराब हो रहा था और उसने शिवानी से कहा, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम दोनों मिलकर, तुमने एक बार भी बाकी सबके बारे में नहीं सोचा, वो सीधा विक्रांत का सामना करने के लिए चला गया और ऐसे में उसे बात का बदला लेने के लिए विक्रांत ने अगर हमारे आश्रम पर हमला कर दिया तो। मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, वो दोनों ही वीरेश की मदद मांगने के लिए यहाँ पर आए थे और मैंने पहले ही उन लोगों को देख लिया था, तो उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें वीरेश से कुछ मदद चाहिए और एक मिनट के लिए उसे बाहर भेज दे, तो वीरेश को मैंने बस बाहर भेजा था, इसके आगे मुझे नहीं पता था कि बोलो क्या करने वाले हैं या कहाँ जाएंगे, सच में सक्षम मुझ पर विश्वास करो, मुझे विश्वास है तुम पर, लेकिन बाकी सबको कैसे विश्वास दिलाओगे और कैसे समझाओगी आश्रम में सबको, क्योंकि झूठ बोलना और बिना बताए कहीं भी जाना सब आश्रम के नियमों के विरुद्ध हैं और तुम दोनों ने ही ये दो नियम तोड़े हैं। नहीं, वहाँ आश्रम में तुम किसी को मत बताना, हो सकता है वीरेश एक दो दिन में वापस आ जाए और तब तक बस ये बात अपने तक रखना, शिवानी ने तुरंत ही सक्षम को मना करते हुए कहा, तो उसकी बात पर सक्षम थोड़ा सोच में पड़ गया और वो तय नहीं कर पाया कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ राजमहल में रानी कादम्बरी की हालत एकदम खराब होती जा रही है और उन्हें अपने दोनों बच्चों को वहाँ महल न देखकर बहुत ही दुख हो रहा था, वो लगातार रोती जा रही थी, लेकिन फिर भी चंद्रिका और समर के मिलने का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा। राजा ने अपनी सेना के सिपाही और लोग पूरे जंगल में, पहाड़ों पर और पूरे राज्य में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राजकुमार और राजकुमारी को ढूंढने के लिए। राजा एकदम बिस्तर लग गई हैं, जो अब तक देखने में दो बच्चों की माँ भी नहीं लगती थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत और जवान वह अब दो ही दिनों में अपनी उम्र से बहुत ही ज्यादा बड़ी लगने लगी हैं, और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। पूरा चेहरा पीला पड़ चुका है, चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई है। हाँ, उन्होंने जेवर और कपड़े अभी भी रानिया वाले ही पहने हुए हैं, जो कि उनकी सेविकाओं ने उन्हें पहनाए हैं, क्योंकि रानी का कुछ भी साज श्रृंगार करने का मन नहीं करता। उन्हें लगातार बस अपने बच्चों की चिंता ही सताती रहती है। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन रानी ने अब तक कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि दवाई भी। तो उनकी सेविका सुर भी उनके सिरहाने के पास आकर बैठी हुई बोली, महारानी कुछ तो खा लीजिए, इसके बाद आपको दवाइयाँ भी खानी हैं, और अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर चंद्रिका और समर के वापस आने पर उन्हें डांट कैसे लगाएंगी? आखिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये उन्हें कौन समझाएगा? उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है मेरी, तो फिर मैं भी अपनी फिक्र क्यों करूं? मेरे दोनों बच्चे मेरे बारे में सोचे बिना ही इस तरह चुपचाप महल से बाहर निकल गए। उन्होंने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। मुझे कुछ भी नहीं खाना है सुरभि, तुम जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो, रानी कादम्बरी ने ही दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा। तो उनकी ऐसी बातें सुनकर सुरभि ने बहुत ही मायूसी से एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी। राजा को भी इस बारे में पता है, वो भी कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन फिर भी रानी उनकी बात नहीं सुन रही। वो समझ सकते हैं, औलाद का गम ही ऐसा होता है। राजा को भी ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, क्योंकि इतने सालों से चंद्रिका के पैदा होने से लेकर अब तक उन लोगों ने जितने भी जतन किए वो सभी बेकार चले गए। आखिर जिसे महल में रोकने के लिए उन लोगों ने एक नकली राजकुमारी रखी और बहुत ही ज्यादा स्वार्थी बनाकर आखिर उसकी बलि भी चढ़ा दी। सबके सामने से विक्रांत वसुंधरा को ले गया, लेकिन फिर भी राजा रानी ये सोचकर खुश थे कि कम से कम उनकी बच्ची सुरक्षित और उनकी आंखों के सामने है। लेकिन फिर भी भाग्य का लिखा वो लोग नहीं बदल पाए, और जो भविष्यवाणी हुई थी ऐसा होकर रहेगा। राजा को भी अब यही लगने लगा है, वो भी बहुत परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी फिलहाल राजा किसी के साथ बांट भी नहीं सकता।
अपने कक्ष में महल की खिड़की के पास खड़े होते हुए राजा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चंद्रिका, समर, कहाँ हैं आप? दोनों वापस आ जाइए, आपकी माँ की हालत आप हमसे अच्छी नहीं जा रही, कम से कम उनके लिए ही महल वापस लौट आइए। राजा अपने आप से ही बात करते हुए ये सब कुछ बोल रहा है, क्योंकि उसकी ये बात चंद्रिका और समर तक तो नहीं पहुंचने वाली, वो दोनों तो यहाँ से बहुत दूर हैं। पहाड़ों के बीच अपनी आंखों के सामने टूटती हुई उस गुफा के सामने वीरेश, चंद्रिका और समर तीनों ही खड़े हुए हैं। वीरेश ने तो ऐसा सब पहले भी देखा हुआ है, इसलिए उसे इतनी ज्यादा हैरानी नहीं हो रही, लेकिन चंद्रिका और समर दोनों ही अपने सामने होता हुआ वो सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा सदमे में हैं। अगर हम अभी भी उसे गुफा के अंदर होते तो क्या होता हमारा? समर ने उसे तरफ देखते हुए एकदम बेवकूफियत भरा सवाल किया। तो वीरेश ने कहा, मर जाते और क्या, तुम्हें नहीं फिर तुम्हारी लाश निकालकर लाते हम दोनों वहां से, इससे ज्यादा और क्या ही होता। उसने ये बात इतनी आसानी से बोल दी, लेकिन उसकी बात सुनकर चंद्रिका और समर दोनों ने ही बहुत ज्यादा हैरानी से उसकी तरफ देखा। समर ने तुरंत ही उस सवाल करते हुए कहा, ये इस तरह किसी के भी करने की बात तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो, वो भी उसके सामने? क्या तुम्हारे लिए किसी के भी जान की कोई कीमत नहीं होती? और हम तो राजकुमार हैं। राजकुमार हो, राजा या फिर कोई मामूली गांव वाला या हमारे आश्रम का साधारण शिष्य, हम लोगों को हमेशा यही सिखाया गया है कि कोई भी किसी से अलग नहीं है, सबकी जान की कीमत भी एक ही होती है। वीरेश ने बहुत ही सहूलियत से उसकी इस बात का जवाब दिया। तो चंद्रिका और समर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन फिर आगे वो दोनों कुछ नहीं बोल पाए। तभी चंद्रिका ने बात बदलते हुए कहा, चलो अच्छा, यहाँ से आगे चले, हमें ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, कोई भी फायदा नहीं है यहाँ रुकने का, और वैसे भी ये एक ठिकाना तबाह हुआ है उन काली शक्तियों का, तो उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा, है ना? हाँ, पता चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आप इस जगह पर आएंगे, क्योंकि ये उनके किसी काम की नहीं बची है, और उन्हें ये भी पता नहीं चल पाएगा कि किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि हमने जानबूझकर ये नहीं किया है। वीरेश ने चंद्रिका की बात का जवाब दिया, और तब तक वो तीनों ही वहां से आगे बढ़ गए। रास्ते में चंद्रिका ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, या फिर बस ऐसे ही पूरा जंगल, पहाड़ और हमारा पूरा राज्य घूमने का इरादा है? चंद्रिका अब तक चलते चलते थक चुकी है, इसीलिए उसने परेशान होकर ये बात पूछी, क्योंकि वीरेश बस चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था, और चंद्रिका समर के पास भी उसके पीछे पीछे आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो वहां के रास्ते भी इतनी अच्छी तरह से नहीं पहचानते। कहानी जारी रहेगी।